एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और वहां रास्ता बंद कर दिया गया था और बगल में लिखा हुआ था टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा असुविधा होगी ताकि हमेशा के लिए सुविधा हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा, बोला दिस इज अवर मूवमेंट। ये हरे कृष्ण आंदोलन है कि एक जीवन, बस मनुष्य जीवन जो है ये एक जीवन थोड़ा असुविधा तपस्या कर लो ताकि भगवत धाम जाके हमेशा के लिए आराम से रहोगे तुम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर। तो हमारे स्तर के लिए भी लागू है। उस स्तर के लिए भी लागू। तो पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे जो अलग अलग स्तर या अलग अलग चाबी गुरुजन प्रभु ने बताया, जो अच्छी तरह से हरि नाम जप करने का दरवाजा खोल सकता है। उसमें से एक पहला ये था कि हम हरे कृष्ण का जप करें, दूसरा कि हम एक मंत्र को सुने, तीसरा ये संकल्प करें दृढ़ता के साथ कि हम यही करेंगे इस समय के दौरान, चौथा यतो यतो निश्चलति, जहां भी मन जाए वहां से उसको वापस लाकर हरिनाम में लगाएंगे, पांचवा और सारे दूसरे विचारों से, दास दूसरे आसक्तियों से कम उस समय के लिए निरासक्त रहेंगे, और छठा के मन की जो इच्छाएं हैं या बहुत सारे विचार हैं उसकी अवहेलना करेंगे, निग्लेक्ट द माइंड। तो उसके दौरान हमने कहा कि मन जो है भौतिक रस का आस्वादन करना चाहता है, कभी कोई बुरे विचार, बुरे व्यक्ति जिसको हमने बुरे इसमें डाला हुआ है, या कोई ऐसी दुर्घटनाएं उसके बारे में सोचते हैं तो हृदय संकुचित हो जाता है ऐसा, और जब कोई अच्छे विचार, अच्छे व्यक्ति या अच्छे घटनाओं के बारे में सोचते हैं, परिस्थितियों के बारे में, तो तुरंत खिल जाता है हमारा हृदय। तो ये खिलना और मुरझाना एक भौतिक रस का आस्वादन करने का तरीका है, और इससे परे जाना है तो मन को भगवान के चरणों में लगाना बहुत जरूरी है। फिर अगले अध्याय में भूरिजन प्रभु कुछ अलग अलग तकनीक बतलाते हैं, तरीके मन को नियंत्रण करने का। पहला तो ये कि मन को एक बहुत ही सरल कार्य दे दो कि बस तुझे और कुछ नहीं करना है इस डेढ़ घंटे या दो घंटे के दौरान, तुझे एक ही काम करना है, बस ये जो जीवा बोल रहा है उसको सिर्फ सुनो, बस उतना ही और कुछ नहीं, आने वाला पीछे वाला कुछ नहीं, सिर्फ एक मंत्र सुनो। दूसरा तरीका उन्होंने बताया किस तरह से मन को भगवान के चरणों में लगाना, कृष्ण के बारे में श्रवण करके हुए, और कृष्ण के नाम के अभिषेक कराना अपने मन को, उसमें स्नान कराना। और एक तरीका है झाड़ू और जूता, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर का तरीका, मतलब हमारे पास अलग अलग अस्त्र होना चाहिए। पता नहीं मन आज कौन सा तरीका निकालेगा, उसके पास भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे बच्चों को भी मालूम है आज पापा का मूड ऐसा है ना, तो ऐसा संभालने का उनको, आज थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं तो आज ये टेक्निक नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा, आज रोना चाहिए बस, कल धमकी देना चाहिए। इस तरह से मन करोड़ों जन्मों से उसको मालूम है पूरा अंदर बाहर, तो हमारे पास अलग अलग अस्त्र होना चाहिए संभालने के लिए। एक तरीका है उसको इस पैर पड़ के बोलने का, बस इतना ही सुन तू है, बस एक काम कर, बस ऑर्डर देने का। दूसरा भगवान के चरणों, भगवान के बारे में सुन, अच्छा तेरे को भी यह भाला ही है। और तीसरा है झाड़ू या जूता तरीका, अलग अलग तरीके से उसको बोलना, क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि ऐसा इधर उधर भागता है, मत कर। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो पिछले बार हमने चर्चा की, वो और एक तरीका बतलाते हैं, और वो है उसके पैर पड़कर भीख मांगना कि भाई ये एक बार कम से कम, ये डेढ़ घंटा तू क्यों इतना इधर उधर भागता है, क्योंकि बच्चे को भी लोग समझाते, तेरी भलाई के लिए बोल रहा, बैठ के पढ़ाई कर, एग्जाम आ रहा है, समझ ले तेरे बहुत बहुत फायदा होगा तेरे को बाद में, नहीं तो बाद में तू रोएगा पछताएगा। तो अलग अलग तरीके हम लोग भी बच्चे को ठीक स्तर पर लाने के लिए, मार्ग पर लाने के लिए करते हैं। इस तरह से मन भी है चंचलम प्रमाथी बलवत दृढ़म, बच्चे जैसा ही है। तो संभालने का एक तरीका वो है जो हमने बताया, मन शिक्षा नाम के सुंदर पुस्तक है जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, हे मन मैं तेरे चरण पड़ता हूं, भीख मांगता हूं बड़े मधुर स्वर से कि कृपया ये सारा अहंकार तेरा ये तू छोड़ दे, और गुरु के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजभूमि के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गायत्री मंत्र के प्रति, हरिनाम के प्रति, दिव्य जो युगल मूर्ति हैं राधा और कृष्ण, उनके चरणों के प्रति थोड़ा आसक्ति तू पैदा कर। तो जब तक शरणागत नहीं होते तब तक ये अहंकार नहीं निकलेगा। तो ये प्रार्थना दूसरे प्रार्थना में करते कहते हैं कि तू पुण्य और पाप कर्मों के बीच में तू फंस मत जाना, केवल राधा कृष्ण की सेवा करना ब्रज में, और हमेशा याद रखना चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो ही ब्रजेंद्र नंदन जयी सचिसुत होइलो से, और गुरु जो हैं वो उनके प्रिय सबसे प्रिय भक्त हैं, तो उनका उनके बारे में तू ध्यान कर और उनकी सेवा में लग जा। अभी हे मन, तीसरा श्लोक कहता है, हे मन ध्यान से सुन, अगर तू ब्रज में जन्म जन्मांतर तक निवास करना चाहता है और तू सचमुच में इस दिव्य युगल मूर्ति की सेवा करना चाहता है, तो बड़े प्रेम के साथ हमेशा उनका स्मरण कर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सामने झुक जा। रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके सारे जितने अनुयायी हैं परंपरा में, इन सबके सामने तू नतमस्तक हो जा, और अभक्तों का संग करने का तेरा जो ये वेश्या जैसा प्रवृत्ति है उसे तू छोड़ दे, जो हमेशा तेरे हृदय के जो खजाना है प्रेम का उसे छीनने के लिए आतुर हैं, ऐसे लोगों का संग जो करने का जो वेश्या प्रवृत्ति है तेरे अंदर वो छोड़ दे तू। तो फिर अगर कौन सा खजाना है जिसको वो छीन ले जा सकते हैं अभक्त संग, तो उसके उसके लिए कहते हैं अगले श्लोक में, मुक्ति का जो शेरनी है जो जोर जोर से दहाड़ रही है उनका तू मत सुन, जो सबको निगल जाने वाली है। नारायण के प्रति आकर्षण बढ़ा जो वैकुंठ में ले जा सकते हैं, नहीं नारायण के प्रति आसक्ति भी छोड़ दे जो वैकुंठ तुझे ले जा सकते हैं। हे मन, ब्रज में सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा कर, जो बहुत ही उदार हैं और दिव्य प्रेम का जो हीरा है वो मुफ्त में बांट रहे हैं। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, जो हाईवे रॉबर बोलते हैं, डाकू, वृंदावन के आसपास भी उधर जाएंगे इस तरफ उस तरफ, भक्ति विनोद ठाकुर के समय में भी ऐसे लोग, वो डाकू लोग होते थे, बड़े बड़े, जो एक शहर से दूसरा शहर को जो रास्ता जाता है उस रास्ते में छिप के रहते थे घाटी में, घाटियों में, और उनका काम रहता है देखना जैसा बीच में आ गया हो सारा धन लेकर उन पर आक्रमण करना या मार डालना या उनके सारे धन ले चलना। तो बोले इस तरह से हम जो ये लंबे मार्ग पे चल रहे हैं भगवत धाम जाने का रास्ता, उस रास्ते में कई डाकू लोग हैं, काम और उसके सारे मित्र, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पूरा गैंग है वो, और लेके खड़े हुए पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं और देख रहे हैं, आया आ जाता है, थोड़ा अंदर आने दे, जंगल के अंदर थोड़ा आने दे। तो जैसा आ जाता है चारों ओर से घेर लेते और लूट लेते, पूरा सारा धन खत्म कर देते, मार देते हैं, भक्ति खत्म ही कर जाते, या फिर एकदम नंगा छोड़ के चले जाते, बस वापस इतना धन कमाए एक क्षण के अंदर खत्म। तो ये लोग ने बांध के रख दिया है हमें, अपने पाप कर्मों में बांध के रख दिया है। हे मन, जोर जोर से चिल्ला तू कि हे बक को मारने वाले, अघा असुर को मारने वाले, मैं अभी मारा जाऊंगा इन डाकुओं के द्वारा, जोर जोर से चिल्लाओ, तब शायद भगवान आएंगे या वैष्णव आएंगे और तुझे बचाएंगे, जोर से चिल्ला तू। तो जब मन कोई माया की चीजों को पकड़ना चाहता है तो हमारे पास वो स्वतंत्रता है कि उसको पकड़ ले या फिर जोर जोर से चिल्लाएं। कोई ऐसे शुद्ध या महान व्यक्ति और उनके मौजूदगी में उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी होती है, जब हम लोग बोलते हैं नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, कभी कभी मन इधर उधर जाता है तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, तो ऐसे या श्रील प्रभुपाद की जय, तो कोई भी ऐसे महान व्यक्ति उनके नाम में भी इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि उसके द्वारा शायद ये लोग सब भाग जाएंगे। सब पुलिस का सायरन आ गया, हिंदी फिल्म में हम देखते हैं करके आया तो सब डाकू लोग भाग जाते, गोली चलने लगता है तो जोर जोर चिल्लाना पड़ेगा तब शायद ये लोग आएंगे, और जैसा ही इनका नाम सुनेंगे तो शायद दूसरे सब चुप हो जाएंगे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के सामने ये इनका करतूत सब बंद हो जाएगा। तो जो हम चुनते हैं, या हम चिल्ला सकते हैं या इनको गले लगा सकते हैं, तो जो हम चुनते हैं ये दिखाता है कि कम हम क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वही चुनेंगे हम लोग, और वो चीज चुनेंगे जो हमें विश्वास है कि ये हमें सुखी करेगा, ये हमें सच्चा सुख और आनंद देगा। हमारे हृदय में अगर विश्वास है यही चीजें सुख और आनंद देगी तो उसके पर उसके उसका आश्रय लेंगे, उसको उसको आश्रय मांगेंगे। तो कई जन्म या कई साल लग गए इस आध्यात्मिक साक्षात्कार के हीरों को इकट्ठा करने में, कई साल लगे हुए हैं, पर एक क्षण के अंदर ये डाकू लोग लूट सकते हैं हमें, काम इत्यादि। तो जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, नहीं तो शायद वो सुन नहीं पाएंगे और हम लूट जाएंगे। जब जैसे सूरज के होने पर अंधकार नहीं होती, इस तरह से ऐसे महान शुद्ध पुण्यात्माओं के नाम स्मरण करने से उस जगह माया टिक नहीं पाती। और अंत में कहते हैं, हे मन, तू अपने आप को और मुझको भी क्यों जला रहा है, गधे के मूत्र में स्नान कर रहा है तू। गधे का मूत्र ना बहुत जलता है, अनुभव नहीं है पर लिखा हुआ है बोलते बहुत जलता है, और बहुत ही दुर्गंध होता है उसका, और कैसा ट्रिकली फर करके नहीं आता पाइप से, जैसा फर करके थोड़ा 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 थोड़ा, पूरा स्नान भी नहीं हुआ, दुर्गंध और जलता है, ऐसा नहीं कि। तो बोले तो ये स्नान कैसा है, बोले प्रतिष्ठा आदि दाम्भिकता और प्रतिष्ठा का जो गधे का मूत्र है उसमें तू थोड़ा 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 करके स्नान कर रहा है, कितने दे? छोड़ दे ये प्रतिष्ठादि जत उपसाखा गण, भौतिक इच्छाएं, अनर्थ, अपराध, हृदय दौर्बल्य, जिसके ऊपर हमने बहुत आशा रखा है ये हमारे सारे समस्याओं को दूर कर देगा और ये हमें सुखी कर देगा। हमें मालूम है, हमने सुना है ये सब अनुकूल नहीं है, पर फिर भी मन इसको पकड़ने का प्रयास करता है, सोचता है कि इसमें स्नान कर लूंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, अरे 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 नहीं नहीं, मैं दूसरा स्नान तेरे को रिकमेंडेशन देता हूं, दूसरा स्नान कर तू, अब तू खुद और मुझको भी भगवान श्री श्री गंधर्व गिरिधारी के शुद्ध नाम का जो अमृत है, नामामृत, इसमें तू स्नान कर। जब हम हरिनाम ले रहे हैं सर्वात्म स्नपनम, एक्चुअली स्नान कर रहे हैं हरिनाम में, स्नान करते वक्त इधर से पानी गिर रहा है और आप बगल में खड़े कितना भी घिसो पानी गिर ही नहीं रहा है सर के ऊपर, तो साफ कैसा होगा, चेतो दर्पण मार्जन कैसा होगा। तो उसके नीचे खड़े होना, जहां से पानी गिर रहा है ना, मतलब कभी कभी झरना के नीचे जाके खड़े होते, झरना से 4 फुट दूर खड़े हुआ है तो एक बूंद भी नहीं लगेगा, तो झरना के नीचे खड़ा होना चाहिए, और नीचे खड़ा होना मतलब ध्यान से सुनना ताकि वो स्नान हो जाए, हमारा अभिषेक हो जाए। हे मन, तभी तू तृप्त हो जाएगा जब भक्तों के संग में, प्रामाणिक भक्तों के संग में कोई भौतिक इच्छा की न रखते हुए हरिनाम का, हरिनामामृत का स्नान करेगा। और अंत में एक दूसरा तरीका बताते, पांचवा तरीका, 4 अलग अलग तरीका बताया, अब पांचवा तरीका बता रहे, मन को, मन की अवहेलना करना, निग्लेक्टिंग द माइंड। श्रील प्रभुपाद जी और एक तरीका बताते हैं, मन की न केवल अवहेलना करो बल्कि हमेशा इसको व्यस्त रखो, मन को व्यस्त रखो। जब मन व्यस्त रहता है श्रवण में, कीर्तन में और हरिनाम की सेवा में, बोले नाम की सेवा में व्यस्त रहो, तो हमको सिर्फ नाम का आनंद नहीं लेना है बल्कि नाम की सेवा करनी, ये नाम सेवा है। ऑफ कोर्स नाम में आनंद है, पर नाम का आनंद चूसने के लिए हम लोग नाम नहीं लेना चाहिए। सचमुच में नाम का पूरा फायदा तब होगा जब नाम प्रभु की सेवा में लगेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निवेदन किया कि हम प्रार्थना करें नाम प्रभु से, बड़ा सुंदर है वो चार्ट वहां, ये नाम प्रभु का स्वरूप है। हम लोग चित्र लगाते प्रभुपाद भगवान का चित्र ऐसा, तो ये नाम प्रभु है, नाम प्रभु का चित्र है, सुंदर क्या बोलते हैं फोटो। तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमें योग्य बनाओ प्रभु कि आपकी हम अच्छी तरह से सेवा करें। नाम प्रभु की सेवा करने के लिए भी योग्यता चाहिए, अभिन्नत्वात् नाम नामिन, नाम से अभिन्न है भगवान, तो उनकी सेवा करने, नाम प्रभु की सेवा करने के लिए भी वो योग्यता हमें प्रदान कीजिए, उसके लिए भी प्रार्थना उन्हीं से करना चाहिए। भूमौ स्खलित पादानां भूमि विरेवावलंबनम त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं विभो, कितना सुंदर एक श्लोक है। भूमौ स्खलित पादानां, आप चल रहे हो और जमीन के ऊपर फिसल के गिर गए तो जमीन को डांटोगे? अरे उठने के लिए जमीन का आश्रय लेना पड़ता है। आप सोचिए जमीन के ऊपर फिसल के गिरे तो उठने के लिए भी जमीन का ही आश्रय लेना पड़ता है, और किसी का हवा का आश्रय लेके उठ नहीं सकते, अरे जमीन को आश्रय लेके उठना पड़ता है। भूमौस खलित पादानाम भूमि रेव अवलंबनम, जिस तरह जमीन पे फिसला हुआ आदमी जमीन का ही आश्रय लेके उठना पड़ता है, इसी तरह से त्वई जात अपराधानाम त्वमेव शरणम विभो, आपके प्रति मैंने अपराध किया अब किसके पास जाऊंगा, आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई दूसरा मालूम ही नहीं कोई आश्रय। तो इस तरह से नाम प्रभु से प्रार्थना करना है कि आपकी सेवा करने की योग्यता आप दो मुझे, क्योंकि आप ही की कृपा से। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते वगतिरन्यथा। तो इस तरह से नाम प्रभु से प्रार्थना करना है कि आपकी सेवा करने की योग्यता आप ही दो हमें। तो इसके बाद वो समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, नाम प्रभु का सेवक मानना, कैसे सेवक बन सकते हैं, नाम प्रभु का सेवा कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब है नाम प्रभु की इच्छा को पूर्ण करो। किसी की सेवा करना है तो उसको पूछना है भाई कि आपको क्या अच्छा लगता है, वो मैं करूंगा, है कि नहीं। किसी की सेवा करना है तो प्रभु से पूछो, प्रभु आपको क्या चाहिए, वो मैं करूंगा। तो नाम प्रभु की सेवा मतलब नाम प्रभु की इच्छा को पूर्ण करना है। अब नाम प्रभु की इच्छा क्या है, अभिन्नत्वात् नाम नामिन हो, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की इच्छा नाम प्रभु की इच्छा है, और नाम प्रभु या भगवान खुद श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आए हैं और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि मेरी इच्छा है पृथ्वी ते आच्छे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम, ये मेरी इच्छा है, हमारा आज्ञा है गुरु होई या तारो ही देश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो नाम प्रभु ने भगवान श्री कृष्ण जो नाम से अभिन्न है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने भक्त के रूप में आकर भगवान की हृदय की जो इच्छा है वो बताया। अब उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास ही हमारा नाम प्रभु की सेवा करने के बराबर। तो श्रील प्रभुपाद सर्वोच्च स्तर का नाम की सेवा किस तरह से करना है अपने वैयक्तिक जीवन के उदाहरण से बताया, और जो भी वो सेवा किए चाहे वो पुस्तक लिखना हो, पाश्चात्य देश में जाना हो, सुबह शाम प्रचार करना हो, लोगों को प्रशिक्षण करना हो कैसे भक्त बनना है, मंदिरों की स्थापना करनी हो, जो भी कार्य किए वो सब का उद्देश्य एक ही था कि सबके सब कलयुग में हरिनाम का आश्रय ले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, कई महात्माओं ने अपना संस्था शुरू किया और साधारणतः तो वो संस्था उस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, फलाना मिशन, वो मिशन जो है उनके नाम से जाना जाता है। पर श्रील प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है हरे हरे कृष्ण आंदोलन, देखिए किसी ने बोला नहीं है किस लिए कर रहे हैं, पर ये जाना जाता है, ये आप लोग हरे राम हरे कृष्ण है ना, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण के भक्त है वो भी नहीं बोलते वो लोग, आप लोग हरे राम हरे कृष्ण है। पूरे विश्व में भी पाश्चात्य देश में भी इस संस्था के लोगों को जाना था, ये दीज आर द हरे कृष्णस। एक चीज प्रभुपाद ने किया, सबको नाम सुना दिया, भले नाम की महिमा जाने या नहीं जाने, चिढ़ाते हैं भी लोग बोलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। शुरू शुरू में मैं जब कॉलेज में हम लोग वहां जाते थे तो ओ कट्टा के ऊपर बैठते हैं ना लोग सारे लड़के, हरे रामा हरे कृष्णा, बोला वेरी गुड प्रभुपाद की जय हो। कोई चिढ़ाता है तो वही नाम लेता है। तो इस तरह से हम भी, उन्होंने जो कुछ भी किया उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हर एक व्यक्ति नाम की महिमा को जाने, नाम का उच्चारण करे, नाम का आश्रय जाए, वो उसमें यशस्वी रहे, यशस्वी रहे। तो इस तरह से हम भी बड़े ध्यान पूर्वक हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हमारी जो सेवा है, भले वो झाड़ू मारने की सेवा हो, मंदिर साफ रखने की सेवा हो, या प्रसाद करने की सेवा हो, या गेस्ट रिसेप्शन, कोई भी सेवा हो, लेक्चर देने की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, या पुस्तक वितरण करने की सेवा हो, या अभी जन्माष्टमी में फंड कलेक्शन का सेवा हो, हम उसको जुड़े नहीं देखते एक्चुअली, पर वो एक्चुअली जुड़ा हुआ है वो, कि इनडायरेक्टली नाम प्रभु की सेवा है। कभी कभी हम दो को अलग कर देते हैं, और अलग करने के कारण हमको लगता नहीं है ये नाम का कैसा सेवा है, ये सब करने से नाम में कैसा बढ़ेगा, हमारा नाम में रुचि कैसे बढ़ेगी ये सब करने से। तो जनरली सेवा को बोझा समझ बैठते हैं हम लोग, ये मेरा काम है और ये मेरा भक्ति है, सिर्फ नाम जब जो मेरा भक्ति है, ये सब पता नहीं बहुत सारा बोझा हो गया, ये भी काम करने को बोला, वो भी करने को बोला। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब नाम प्रभु की सेवा है, क्योंकि ये सब करने के कारण लोग आएंगे, नाम का आश्रय लेंगे, नाम के बारे में सुनेंगे, नाम की महिमा को जानेंगे। भक्तों के संग में नाम का श्रवण करने से थोड़ी बहुत आसक्ति होती है और जो हृदय की गंदगी दूर हो जाती है। तो ये सब हरिनाम, नाम प्रभु की सेवा से जुड़ी हुई है, और इसको कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली जब सेवा इस भावना से करेंगे, ये डायरेक्टली नाम प्रभु की सेवा है, भले इनडायरेक्ट लगे। अभिषेक करते वक्त एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, दूसरा घड़ा भर के ला रहा है, तीसरा घड़ा साफ करके रख रहा है उधर, लगता है ये डायरेक्ट सेवा है, और वो सेवा नहीं है, वो तो सिर्फ वो बर्तन साफ कर रहा है बस, दूसरा भर रहा है बर्तन, ये असली सेवा है, क्योंकि ये डायरेक्टली अभिषेक कर रहा है। ये कम बुद्धि वाले लोग इसको देखते हैं ऐसा, कम बुद्धि वाले लोग वो कनेक्शन नहीं देखते, अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ऐसा आश्रय नहीं होगा। तो इस तरह से दुर्भाग्यवश, इसीलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय के 57 श्लोक 18.57 कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तौ सततम् भव, मच्चित्तौ सततम् भव। चेतसा सर्वकर्माणि, जो भी कार्य कर रहे हो, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत, परिवार की देखभाल कर रहे हो, वो भी एक सेवा है, वो भी एक जिम्मेदारी है, अगर सही भावना से करे तो। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य, मुझे अर्पित करो उसका फल, तत्कुरुषो मद अर्पणम मयि सन्यस्य मत परह बुद्धि योगम उपाश्रित्य, मेरा आश्रय लो उस सेवा के दौरान, और इस तरह से मच्चित्त सततम भव, हमेशा मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते रहो। इन ऑल एक्टिविटीज बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत संग है, आपकी भावना क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सेवा महत्वपूर्ण है, पर सेवा जो है वो भावना का बाहरी स्वरूप है। वो भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यात् प्रेच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामी। उस एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा जल, भगवान उस भावग्राही जनार्दन है, उस भावना को देखते। पर कोई ये नहीं कह सकता मेरी भावना है, एक्चुअली मुझे मेरी बहुत भावना आपके प्रति, पर कुछ करेंगे ही नहीं तो उसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा, भावना बहुत है पर किया क्या तूने। पर कोई कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, पर भावनात्मक रूप से नहीं कर रहा है, तो वो एक्चुअली प्रगति नहीं हो रहा है। आप बोलिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, और उसीलिए स्वाभाविक रूप से भावना नहीं होने के कारण थोड़ी समय के बाद वो बोझा बन जाएगा और वो काम लगेगा, सेवा नहीं लगेगा, वो सेवा नहीं लगेगा, सेवा 100% बोझा बन जाएगा। और बोझा बनने के बाद कोई भी चीज मैकेनिकल हो जाएगा, वही चीज करना सुबह और शाम, काम ही काम ऐसा हो जाएगा, होगा, क्योंकि भावना नहीं है। अगर पैकेट में प्रोडक्ट नहीं है तो पैकेट कितना दिन लेके चलेगा आदमी? आप खरीदने जाओगे, बोला ये साबुन का पैकेट दिया, अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है। तो भावना अगर नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ है, तो केवल भावना और क्रियाशील नहीं होना ये सिर्फ दांभिकता है। अरे बहुत भक्ति, बहुत भक्ति, करता क्या है तू? अगर पति पत्नी से कहे बहुत प्रेम करता हूं तुम्हारे प्रति, पर याद नहीं करता, उसके कुछ करता नहीं है, तो बोले ये कैसा प्रेम है? और अगर करते रहे पर थोड़ा भी भावना नहीं है तो बोझा बन जाएगा।
तो इस तरह से दोनों तरीके से
सेवा को, जो बाहरी स्वरूप है, भावना का बाहरी स्वरूप है सेवा। तो अगर सेवा को भावना से अलग कर दे तो वो माया है, कृष्ण को उनके नाम से अलग कर दे तो माया है। कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण की गुण, कृष्ण की लीला, कृष्ण का धाम कृष्ण से अभिन्न है, और वो अलग करना ये मायावादी का काम है। जब कृष्ण आते हैं तो वो उनका स्वरूप माया है, ये मायावादी है। तो कृष्ण और कृष्ण की सेवा को अभिन्न देखना, ये एक्चुअली कृष्ण के नाम की सेवा करने के बराबर है। भौतिक मन का काम क्या है? किसी चीज को, सेवा को, उसको काम बना देना। अरे अभी 16 माला करना है, आज भारी बाकी है अभी तक। अभी एक नव युवक जो एक नव युवती के साथ बहुत ही प्रेम हो गया उसका, उसको बोला जाए 7 बजे उसने तुझे बुलाया है, अरे 7 बजे उसे मिलने को भी जाना है, उसे बैठ के बातचीत भी करना है, ऐसा बोलेगा कभी? वो कॉलेज में जाके बोल के देखो, दूसरा काम करते करते ही सोचा रहेगा 7 बजे अभी तक नहीं बचा, 7 जल्दी 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 फटाफट वो जो प्रोजेक्ट लिखना है सब लिख दूंगा, 7 बजे के अंदर सब हो जाना चाहिए। या युगाई तब निवेश। तो अलग, अगर जिस दिन हमको लग रहा 16 माला प्रभुपाद ने क्यों इतना किया, प्रभु जी 4 माला में नहीं हो सकता है क्या भक्ति? एक नाम काफी है, कितना सारा जस्टिफिकेशन आ जाता है वो। तो वो सेवा को काम बना सकता है। तो जब कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त दहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि, वो भावना को स्वीकार करते हैं। समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक उसके जन्मदिन के दिवस या कुछ कुछ एग्जाम पास हो गया उसकी खुशी में एक फूलों का एक गुच्छा लाके देता है या एक गुलाब का फूल लाके देता है तेरे लिए, तो हाँ नहीं बोल क्या इतना पास किया मैं, 1 साल पढ़ाई करके एक गुलाब दिया तू, कुछ अच्छा कॉस्टली चीज देता तो हार वार देता तो सोने का फिर ठीक है, ये गुलाब बस तो अरे याद तो किया, यानी ही इज अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट, तूने इतना ये किया, या फिर तेरा जन्मदिन है, तेरे होने से मेरे को कितना फायदा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बहुत सारे जन्मदिन होते रहे तेरा। तो ये लाना एक फूल, दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड अप्रिसिएशन, वो अप्रिसिएशन का एक बाहरी स्वरूप है वो। तो हम लोग सिर्फ बोल दिया ना, अभी दे दिया ना, अरे हर बर्थडे को लाके फूल देता हूं ना तेरे को, और क्या मांग रहा है अभी, यानी वो सेवा को सिर्फ देता है फूल, देता है आके फूल लेके जाता है, नहीं। तो अगर हम भी, हमारा भी भावना ऐसा हो जाता है, टिक मार्क बस डायरी के ऊपर लिखा है, इसको फूल देने का, इसको ये चढ़ाने का, इसको ये, हर फ्राइडे इसको भोग लगा देने का, ये मेरा सेवा, क्लिक टिक हो गया, बस डायरी किया ना, अभी 5 साल से सेवा कर रहा हूं ना, और भी क्या कंप्लेंट है तेरा, अभी करता हूं ना कर आके, तेरे को हर बार थैंक यू बोलता हूं ना हर शाम को आके, अभी क्यों फिर से पीछे पड़ी, हो सकता है ऐसा। तो जब कार्य कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में भावना डालना जरूरी है, पैकेट के अंदर प्रोडक्ट डालना जरूरी है। तो और उसको बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, न केवल, मतलब कोई भी चीज एक रिचुअल, एक बाहरी कार्यकलाप सुपरफिशियल न होके उसके अंदर थोड़ा गहराई में वो भावना होना चाहिए, प्रेम, वो एक्चुअली हमारा प्रयास साधना के दौरान होना चाहिए, ताकि हमारे जो भी कार्य हैं उसमें मतलब हो जाएगा, उसमें बहुत ही मतलब आएगा, देयर इज मीनिंग टू इट, और कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे। जब विदुर ने, विदुरानी ने अपने घर में उनको, कृष्ण को जो भी था उसे अर्पण किया, बड़े प्रेम से भगवान ने स्वीकार किया। दुर्योधन का भोग न खायो, रुख साख विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो वो बढ़ाना, हमारी भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हरिनाम जो है ना, नाम जप, ये भी नाम प्रभु की सेवा है। तो एक 16 माला जप करना, ये बाहरी एक रिचुअल है, एक रिवाज, एक रीति है, नाम प्रभु की सेवा का एक रीति है कि 16 माला जप करना। पर वो जप वो बाहर दिखाना है, क्या दिखाना है हमको भगवान को, कि प्रभु आपके प्रति हमारा प्रेम है, और वो प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मैं ये 16 माला कर रहा हूं, हर कुछ भी हो जाए 16 माला करूंगा, क्यों, क्योंकि आपके प्रति मेरा प्रेम है, आपके प्रति मेरा जो कृतज्ञता है वो मैं दर्शित करना चाहता हूं, भले कुछ भी और दूसरा चीज हो वो सब आप ही की कृपा से मिला है, और ये दिखाने का समय है, ये 16 माला करने का समय। तो और इसको अगर बड़े भावनात्मक रूप से करेंगे, कृतज्ञता पूर्वक और सचमुच में एप्रिशिएट करते हुए कि भगवान ने कितना किया है और हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, तू मेरा नाम ले तेरी भलाई के लिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा, तेरे को साथ साथ फायदा होने वाला है एक नाम लेने से, मेरे को बड़ा, तू बहुत बड़ा ऐसा नहीं कर रहा है तेरा नाम लेके, मेरा नाम ले तेरी फायदा के लिए। तो उसको भी अगर प्रेम पूर्वक नहीं करेंगे तो फिर कैसे, किस तरह से प्रगति कैसे करेंगे। तो इसी तरह से, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर गहराई में जाना है, भक्ति की गहराई, भक्ति रसामृत सिंधु की गहराई में हमको गोता लगाना है, तो ये नाम जो जप है वो सेवा है, वो सेवा काम नहीं बन जाना चाहिए। इसी तरह से कोई भी सेवा काम नहीं बन जाना चाहिए, बोझा नहीं बन जाना चाहिए। और ये बोझा कब बनता है, कौन बना देता है उसको, सेवा को काम कौन बना देता है, मन। जब कॉन्शियस नहीं होते, भावनात्मक रूप से नहीं, और भावना क्यों चली जाती, क्योंकि मन कहीं और लग जाता है, इसीलिए ऐसे भौतिक मन को अवहेलना करना ही पड़ेगा ताकि हम सेवा अच्छे तरह से कर पाए। नाम होते जा रहा है पर मन कहीं और सोच रहा है, तो ये बोझा बन गया, काम बन गया। इसीलिए नाम को बहुत कुछ भी सोचे उसको अलग करके नहीं, अभी जो कर रहा है ना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, कृष्ण का स्मरण कर, कृतज्ञता पूर्वक अप्रिशिएट कर जो भगवान से कृपा से मिली, इस भावना से जब करेंगे तो भुरीजन प्रभु कहते हैं ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि नेग्लेक्टिंग द माइंड टू बिकम एब्सॉर्ब्ड इन सर्विस, सेवा में मग्न होना और मन की अवहेलना करना, यही हमको प्रभुपाद जी ने ट्रेनिंग दिया। क्यों, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, आलस मन जो है, उसको मन को कुछ काम नहीं दिया तो माया का फैक्ट्री बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। शैतान का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चल रहा अपने हृदय में, अपने मन में। चुपचाप बैठा है तो सोचते रहता ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों ना करे। नया नया तरीका, अब जब के समय में देखो कितना कितना नया तरीका मैन्युफैक्चर करके लाता है प्रोडक्ट। उसे बोला ये सब नहीं चाहिए, अभी जो प्रोडक्ट तैयार करना है उस पर ध्यान दे बस, और कुछ नहीं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको एक फॉर्मूला दिया, बोले एक मंत्र दिए हमको, भूरीजन प्रभु समझाते हैं। बोले 1967-68 में जब भक्त लोग, इतना भक्त लोगों को बिजी रखते थे प्रभुपाद, किसी को टाइम ही नहीं था, माला लिया तो सो जाते थे, चलते चलते कूदते कूदते अगर जब किया तो किया, क्योंकि इतने पैशनेट थे वो लोग, उनको ऐसा सेवा दिया कोई सवाल ही नहीं, चुपचाप बैठे तो सोने का ही बस, जहां भी बैठे सो जाते थे, इतना बिजी रखा उनको। और ये सब करने के बाद अंत में जब रिजल्ट दिखाया तो प्रभुपाद ने बोला डबल इट, एक फॉर्मूला दे दिया, इस साल जो किया ना अगले साल डबल, जो भी किया बोला अगले साल डबल। प्रभुपाद हम लोगों ने 50,000 बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, वेरी गुड, डबल इट, डबल इट। मेरा भाई, बड़ा भाई एक मेडिकल कंपनी में काम कर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, तो एक दिन आया बड़े खुशी से आया और बोला हमारे मन, हमारे कंपनी में उन्होंने एक स्कीम अनाउंस किया है। जनरली ये लोग 5,000 या 7,000 का प्रोडक्ट बेचते थे, ये लोग मेडिकल कंपनी वाले लोग, स्टैंडर्ड कई सालों से चल रहा था, 7,000 किया तो वाह एक्सपर्ट। उन्होंने बोला 25,000 जो करेगा उसको सोने का एक मेडल मिलेगा, जो 25,000 का बिजनेस दिखाएगा एक महीने में उसको एक मेडल मिलेगा सोने का। तो सबके सब सुबह से शाम उठते ही क्या स्फूर्ति, स्प्रिंग जैसा उठते थे बेड से, ठक 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 पूरा किया। और 10 से 11 लोग उस कंपनी में है ही, 15 लोग, 10 से 11 लोगों ने 25,000 का मार्क क्रॉस किया। तो उन लोगों को पार्टी के लिए बुलाया, एक दिन सबको पार्टी के लिए बुलाया, पार्टी में बुलाया, पार्टी में बुला के खूब खिलाया, खूब पिलाया, गुणगान किया, और सबको एक एक 750 रुपए का गोल्ड प्लेटेड वाला, थोड़ा गोल्ड था शायद उसमें, छोटा था एकदम एकदम छोटा, वो सबको गले में पहना दिया, सब खुशी थे। और लास्ट में बोला भाइयों तुम लोगों ने ये महीने में दिखा दिया कि तुम्हारा एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, अगले महीने से हर एक व्यक्ति 25,000 का सप्लाई नहीं किया तो कंपनी से बाहर। बोला है, बोला ये गाजर लटका के हमको गधा बना दिया, ये माया ऐसा करती है। पर भगवान के शुद्ध भक्त भी यही तरीका अपनाते हैं हमारी भलाई के लिए, हमारी कैपेसिटी को दुगना करके दिखाते हैं, दिखाने के बाद बोलते हैं तुम्हारी कैपेसिटी ये है और अभी डबल करो, मतलब माया को इतना भी उंगली भी देते नहीं है, क्योंकि माया को उंगली दिया तो हाथ पकड़ेगी वो। तो प्रभुपाद ने देखा कि पाश्चात्य इतने पैशनेट लोग हैं, इन लोगों को ऐसा बिजी करके रखा, बोला मैं जितना ट्रांसलेट करता हूं उतना छापते नहीं हो तुम लोग, कॉम्पिटिशन हो गया उन दोनों में। प्रभुपाद बोले मैं जितना ट्रांसलेट करता हूं उतना छापो तुम लोग। चैतन्य चरितामृत का सार 17 एक महीने के अंदर, 2 महीने में एक एक बुक निकालते थे वो लोग, 1 महीने में 17 वॉल्यूम निकालो बोल दिए। प्रैक्टिकली सोना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, कोई ऐसा सोता था तो वो सोया, दूसरा आदि उसको एक पेंटिंग करते करते सो जाता था, रात को 2 बजे सोया तो दूसरा आके वो पेंटिंग खत्म करके जाता था, सुबह उठ के देखा पेंटिंग हो गया, बाकी कुछ बाकी है, हाथी हो गया, पूछ बाकी है, वो खत्म करके जाता था। इस तरह से उन्होंने बोले कैसा किया हमको भी नहीं मालूम। तो प्रभुपाद जी का फॉर्मूला था, तुम्हारी कैपेसिटी अभी समझ में आई, डबल इट। और इस तरह से, पर वो किस लिए कर रहे हैं? क्या हमारा उपभोग करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए? एक रूप से बाहर से लगता है कि अरे बाप रे, हमारे अच्छे जीवन का टाइम उनको दे दिया इस व्यक्ति को, पर एक्चुअली इसका करोड़ गुना फायदा होता है। नहीं तो समय ऐसा चला जाएगा, देखते 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 गया, क्या हो गया, पांच साल में क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, ऐसे टाइम पास, सोया उठा, किसी तरह से घिस घिस के सोला माला किया, क्या और क्या सेवा किया, कितने लोगों को दिया तुमने, क्या सेवा किया नाम प्रभु का, चला जाएगा ऐसा देखते देखते। पर शुद्ध भक्त जो है जानते हैं समय का मूल्य जानते हैं, और न केवल मूल्य जानते हैं, उसका पूरा वसूली भी लेना चाहते, मां जानते हैं, इस तरह से कुछ सेवा उत्पन्न करते हैं। लेकर 50,000 बुक बांटो, भेटी जी बांटो, पुस्तक बांटो, जन्माष्टमी बड़े तरह से बनाओ, कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, डबल इट। बिजी 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 कैसा समय गया समझता नहीं है, पर 15 साल के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या दिन थे वो। आज भी प्रभुपाद जी के शिष्य पीछे मुड़ के देखते हैं, बोलते हैं जिंदगी में वो दिन जो थे उससे अच्छा दिन कोई था नहीं, जब समय नहीं मिलता था सोने का, खाने को समय नहीं मिलता था, भागते भागते खाते थे हम लोग, पर वो दिन जो थे हीरे जैसे थे। तो इस तरह से एक शुद्ध भक्त जो होता है नाम की सेवा में लगा के एक आस्वादन कराता है हमको। अरे मूर्खों, क्यों जिंदगी बर्बाद करे, आस्वादन करो, ये अमृत का आस्वादन करो, क्यों गधे के मूत्र में स्नान कर रहे हो? ये हरिनाम प्रभु की जो सेवा है, गोलोक एरो प्रेम धन, जिसके लिए ब्रह्मा शिव जी लक्ष्मी जी भी लालायित है, वो महाप्रभु की कृपा से मुफ्त में मिला है तुम लोगों को, समय बर्बाद मत करो, लो इसको। तो इस तरह से प्रभुपाद जी की कृपा से, और इसको अगर भावनात्मक रूप से करे तो हमेशा हमेशा के लिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अंत में कहते हैं डिवोशन हैज टू एंटर, सो वॉट एवर वी डू वी शुड नॉट मेक इट वर्क, बोझा नहीं हो जाना चाहिए, काम नहीं हो जाना चाहिए, और सिंपली द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस, अब क्या करना है मेंबर होने के लिए करना पड़ता है, बट रादर ऑफर इट टू गुरु एंड कृष्णा टू गिव देम प्लेजर, उनको आनंद देने के लिए करो। डिवोशन हैज टू एंटर डीपली इन आवर कॉन्शियसनेस, भक्ति जो है हमारी चेतना के कोने कोने में जाके प्रवेश हो जाना चाहिए, हर एक कण कण में। एंड फॉर दिस टू हैपन वी मस्ट नेग्लेक्ट एंड बिकम डिसओबीडियंट टू अवर एवर शिफ्टिंग, ऑलवेज ग्रैस्पिंग, फॉर एवर लेमेंटिंग मेटीरियलिस्टिक माइंड। नथिंग अदर देन डिवोशन टू कृष्णा कैन सेटिस्फाई अस। ये होना है, अगर भक्ति हमारे कण कण में, रोम रोम में प्रवेश करना है, हर एक पेशी में प्रवेश करना है, भक्ति भक्तिमय बोलते हैं ना, कृष्ण भावना बोलते हैं, तन्मय, तन्मय मतलब कण कण में फैल जाना चाहिए, अगर गहराई में जाके सब जगह फैलना चाहिए ये हमारे पूरे हृदय में, तो इसको होना है तो हमें अवहेलना करना है और उसकी बात मानना नहीं है, क्या बोलते हैं, डिसोबीडियंट, आज्ञा का पालन न करना, किसका, चंचल, हमेशा भौतिक चीजों को पकड़ने की इच्छा करने वाला, हमेशा रोते रहने वाला, ये क्यों, इतना क्यों, ऐसा क्यों, इतना क्या, हमेशा रोते रहने वाला, ये भौतिक मन की जो इच्छाएं हैं और उसकी जो आज्ञाएं हैं, उसकी आज्ञा को न सुनना और उसकी आज्ञाओं को अवहेलना करना। केवल भक्ति जो है और भक्तिमय सेवा हमें एक्चुअली तृप्त कर सकता है। तो इस तरह से नाम प्रभु की सेवा, इससे स्वाभाविक रूप से नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, और तब जब नाम लेंगे तब उसमें थोड़ा निष्ठा या रुचि आ जाएगी। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।